الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் கரீம் மே யே இர்ஷாத் ஃபர்மாதே ஹேன் ஔர் ஹுஸூர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கே ஜரியே சே யே ஏலான் கர்வாதே ஹேன் கே இன்ஸே கஹ தீஜியே அப்னி உம்மத் சே யே கஹ தீஜியே கே அகர் தும் அல்லாஹ் தஆலா சே மொஹப்பத் ரக்தே ஹோ ஃபத்தபிஊனி தும் மேரா இத்தபா கரோ میرے پیچھے چلو اور طبیعہ عربی میں طبیعہ ایک اس جانور کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کو اس کی ماں چلنا سکھاتی ہے اور وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں کیوں چل رہا ہوں بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دوڑنا سکھاتے ہیں چلنا سکھاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے اس بچے کو جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو یا دوڑ رہا ہو اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی میں کہ یہ دوڑ رہا ہے پیچھے اور چل رہا ہے پیچھے مقصد کچھ پتہ نہیں کیونکہ اس کی ماں یہ کام کر رہی ہے اس لیے یہ بھی کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری اتباع کرو میرے پیچھے چلو بس قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر تو مجھے باپ مانتا ہے اور تیرے دل میں اگر میری کچھ عظمت ہے محبت ہے تو میرا یہ کام کر دے اگر تو مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے تو یہ کام کر دے یہ نفسیات ہے بچے کو ابھارنے کی اس کو جوش آ جاتا ہے اور وہ اطاعت پر فرما برداری پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر تم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے اگر محبت ہے اللہ کو اپنا رب مانتے ہو اس کو اپنا پالنے والا جانتے ہو اللہ کی کچھ عظمت ہے تمہارے دلوں میں تو حضور کا اتباع کر لو فاتبعونی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے محبوب کے معنی ہوتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے محبت کیا گیا تو اتباع کا یہ انعام کم ہے کہ اللہ کو محبت ہو جائے ہم لوگوں سے فاتبعونی یحببکم اللہ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں تو اتباع سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کرنا آپ کے پیچھے چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے ہٹ کر چلے میری سنت سے منہ موڑ لے میری سنت کو کوئی اہمیت نہ دے ہاں معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے اس رخ پر چل پڑے سوسائٹی یا ماں باپ یا رشتہ دار اس کو جس رخ پر چلانا چاہ رہے ہیں اس رخ پر چل پڑے فلئی سمنی وہ مجھ سے نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تم سے توڑوں کس سے جوڑوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رشتہ ٹوٹ گیا تو کٹی ہوئی پتنگ ہے وہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جس پتنگ کا تعلق اپنے اڑانے والے سے ہوتا ہے, اگر کہ اڑانے والا نظر نہ آ رہا ہو مگر وہ پتنگ کی رفتار اور اس کی اڑان کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کسی اڑانے والے سے رابطہ ابھی برقرار ہے, اس کی اڑان سے پتہ چل جاتا ہے. اور جس پتنگ کا اپنے اڑانے والے سے رابطہ کٹ چکا ہو, وہ پتنگ جس طرح نیچے آتی ہے ہر آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اپنے اڑانے والے سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر امت کی آج یہی حیثیت ہے جو کٹی ہوئی پتنگ کی ہوتی ہے. پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کٹی ہوئی پتنگ کا؟ جب وہ کچھ زمین کے قریب پہنچتی ہے تو کانٹے لیے ہوئے بچے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس کا کیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں, کسی کے ہاتھ نہیں آتی. جو اس پر وہ ٹوٹتے ہیں اور جس طرح وہ اس پر اس کو لوٹتے ہیں اور وہ بالکل برباد ہو کر رہ جاتی ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. یہی حال ہے, یہ امت کٹی ہوئی پتنگ ہے اور سارے کافر اس پر چڑھ دوڑے. یوشک الامم ان تدعا علیکم, حضور نے پیشگوئی فرما دی تھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری کافر امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی, تم کو تمہارے اوپر دعوت دیں گی. کما تدعا الاکلت الى قصاتها, جیسے کھانے والے دعوت میں شرکا ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں, آؤ بھائی آؤ, آپ کو جس چیز کا انتظار تھا کھانے کا آئیے وہ لگ گیا ہے کھانا. اس طرح تمہارے اوپر دعوت دیں گی امتیں, کافر امتیں ایک دوسرے کو, آؤ ان مسلمانوں کا سیاہ پانچا کرو. ایک صحابی نے عرض کیا, ومن قلت نحن یومئذ, کیا ہم اس دن قلت میں ہوں گے, تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تم اس دن اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل, مگر تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو سیلاب کے پانی میں جھاڑ اور تنکوں کی ہوتی ہے, تنکوں کی گھاس پھوس کی. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ, اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارے روب کو نکال دیں گے. اور وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیں گے, کمزوری اور ضعف کو ڈال دیں گے. صحابہ نے عرض کیا وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت, وہن دو چیزوں کا نام ہے, دنیا کی محبت, دنیا والوں کی محبت, یا دنیا کی محبت جس سے مرعوب ہو کر ان کے روب میں آ کر تم نے حضور کی سنت کو چھوڑا. کہ معاشرہ یہ کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے جی ملا ہو گیا. اور فرمایا وحب الدنیا وکراہیت الموت, اور موت سے کراہیت, موت کو ناپسند کرنا. یہی حال ہے امت کا, یہی حال ہے کہ حضور کی سنت کو چھوڑ کر اس کی وہی حیثیت ہے معاشرے کے سیلاب میں جھاڑ پھونک کی طرح, جھاڑ گھاس پھونک جیسے ہوتی ہے اس طرح, جیسے سیلاب میں گھاس پھونک بہ جاتی ہے اسی طرح بہ رہے ہیں, اور سب کے سب ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس پر لپکے ہوئے ہیں اس کو برباد کرنے کے اوپر. فمن ربی بان سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ سے ہے ہی نہیں, میرے سے تعلق ہی نہیں ہے. جب مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے کم ہے. رونا تو یہ ہے میرے دوستو, رونا تو یہ ہے کہ ہمیں اب بھی ہوش نہیں آ رہا, نہ جانے کب وہ جب عذاب آ کر ہماری گردن پکڑے گا, جب ہمیں ہوش آئے گا. اس وقت کوئی تلافی کا موقع نہ ہوگا. یہ سنت, اتباع سنت واحد ذریعہ ہے اللہ سے بندوں کے تعلق کو جوڑنے کا, واحد ذریعہ. حضور کا کھانا, حضور کا چلنا, حضور کا سونا, حضور کا جاگنا, حضور کا گھر میں داخل ہونا, حضور کا گھر سے باہر نکلنا, حضور کا مسجد میں تشریف لانا، مسجد سے باہر نکلنا، بازار میں جانا، بازار سے باہر آنا، کیا طریقہ تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے ہمارے تعلق کو جوڑنے والی ہیں. حضور کی شکل و صورت کیسی تھی؟ حضور کا لباس کیسا تھا؟ حضور کی چال کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی چال کو محفوظ کر لیا صحابہ نے، سبحان اللہ. حضور کا چلنا کیسا تھا؟ کان نما یا حق تو من خبر بھی. حضور کا چلنا ایسا تھا، آپ کے چلنے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہا ہو، اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. آپ ایسے چلتے تھے زمین پر، ہموار زمین پر ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہا، تھوڑا سا جھکے ہوئے، رفتار تھوڑی سی تیز، اور آگے کے پنجوں پر تھوڑا سا بوجھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت یہ ایڑی کے مقابلے میں، پنجوں پر زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے جب آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہو. بس یہی حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا نیچے جھکے ہوئے، رفتار تھوڑی سی تیز، آگے کے پنجوں پر تھوڑا سا بوجھ زیادہ، اور قدم جمع جمع کر رکھنا. یہ نہیں کہ ایک قدم اٹھایا اور پھر دوسرا رکھا، اس طرح یہ نہیں، گھستے ہوئے قدم کو گھستے ہوئے نہیں چلتا آدمی جب اوپر سے نیچے آ رہا ہو. یہ سنتیں ہیں حضور کے چلنے کی، یہ سنت ہے جو چل رہا ہو اس طرح چلے حضور کی اتباع میں، تو اللہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی طرح چل رہا ہے. جس نے شکل بنا لی اللہ اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ میرے محبوب کی شکل میں ہے. جیسے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے، ایسے ہی وہ شخص بھی پیارا ہو جاتا ہے جو حضور کی اتباع کرنے والا ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قنوج میں ایک بوڑھی عورت تھی، ایک افسر کو وہ، ایک آفیسر نوجوان افسر کو وہ اس کے دفتر میں جاتے ہوئے راستے میں روکتی تھی، پہلے سے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، اس کو روکتی تھی، اس کی گاڑی رکواتی تھی، اس کو بلا اپنے گھر میں بٹھا کر ناشتہ کراتی تھی، کچھ دیر اس سے باتیں کرتی تھی، پھر اس کو رخصت کرتی تھی. اس نے پوچھا اما جی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا تمہارے جیسا، بالکل تمہاری جیسی آواز، تمہارے جیسی شکل و صورت، تمہارے جیسا چلنا پھرنا اس میرے بیٹے کا تھا، جوان بیٹا تھا، رخصت ہو گیا دنیا سے، مر گیا، تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی. یہ مخلوق کا حال بتا رہا ہوں، مخلوق کا. اللہ کو تو مخلوق سے زیادہ محبت ہوتی ہے، مخلوق کو یہ بھیک کس نے دی؟ یہ جو اس بوڑھی عورت کو ایسی محبت ہو گئی اپنے بیٹے کے جیسا آدمی دیکھ کر، یہ محبت کس نے دی اس کو؟ اللہ نے دی. بھیک دینے والے کے پاس زیادہ خزانہ ہوتا ہے، بھیک مانگنے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو محتاج ہوتا ہے. جب اللہ کو، جب ایک ماں کو ایسی محبت ہے کہ اپنے اس کا مرحوم بیٹا، اس کی شکل میں اسے ایک آدمی نظر آیا، اس کا اتنا احترام کر رہی ہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہے کہ اب اپنا بیٹا تو نہیں دیکھ سکتی، اس کے جیسا ایک آدمی ہے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہوں، جو حضور کی شکل و صورت میں آ جائے اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس کا، کتنا اللہ کا پیارا بنے گا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ارے میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ بھی اتباع سنت نہ کر رہا ہو، اللہ کو راضی رکھنے کا جذبہ نہ بھی ہو، تب بھی اللہ کو پیار آتا ہے. ایک نہ ایک وقت کچھ نہ کچھ اس کو اخلاص نصیب ہو جائے گا. اگرچہ شروع اس نے اخلاص کے ساتھ نہ کیا ہو، ریاکاری سے داڑھی رکھ لی، ریاکاری سے سنت کا لباس اپنا لیا، ریاکاری سے سنت پر عمل کر رہا ہے. دیکھیے اس کی دلیل بھی دیتا ہوں، ایسی بات نہیں کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، بہت بڑا مجمع، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا، اور ہر ایک کے پاس دو دو رسیاں تھیں، وہ رسیاں انہوں نے اپنے جادو کے زور سے ان کو ایسا بنایا کہ وہ سانپ نظر آنے لگے. 140,000 سانپ ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن بشر بھی تو تھے، بشری تقاضے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے خوف محسوس ہوا. قرآن میں اللہ فرماتے خوف محسوس ہوا، 140,000 سانپ ایک طرف،
नजर आ रहे हैं सांप, थे नहीं वो, नजर आ रहे हैं सांप जादू के जोर से, वो गए एक ही वक्त में, क्या हाल होगा? एक सांप देख के हमारा बुरा हाल हो जाता है। जहां 140,000 सांप, 70,000 जादूगर, हर एक के पास दो दो सांप थे। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर अल्लाह की थपकी ना आती तो मामला बहुत मुश्किल था। कुल ना ला तखफ, अल्लाह फरमाते हैं मूसा डरो नहीं, खौफ मत करो, इन्नका अंतल आला, जीत आला तो नहीं रहोगे, बरतर तो नहीं रहोगे, खौफ ना करो। वालकुल माफी यमीनी का तलकफ मा सनाऊ, जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, सीधे हाथ में जो लाठी है तुम्हारी, इसको डाल दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बस इत्तेबा की, अल्लाह ताला की हुक्म पर चले। हम ये देखते हैं बिरादरी, हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक कर दी क्या होगा। मैं अर्ज करता हूँ बड़ों के यहाँ, जो बड़े समझे जाते हैं, बड़ों के यहाँ इसका एहतमाम नहीं कि बेटी की रुखसती कैसे की जाती है। हजरत अली अपने घर पर मौजूद है, हजरत फातिमा को खुद लिया है हुजूर ने, हमारी बेटियां हजरत फातिमा से बढ़कर, फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं और तावीज क्यों लेते हैं? हमारे पास तावीज लेने आते हैं, शौहर नाराज है, सास नाराज है, तावीज दे दीजिए। ऐसा कोई तावीज हमारे पास नहीं है भाई। आपने सुन्नत के, मैं कहता हूँ आपने सुन्नत के मुताबिक शादी की थी? आपने शादी में सुन्नत का ख्याल रखा था? ना रखा तो भंगन का ख्याल रखा, काम वाली के ये मुतालबे के मुताबिक उसको पैसे दिए कि शादी का घर है, इसको भी नाराज ना करो, इसको भी नाराज ना करो। ना रखा तो अल्लाह का ना रखा, ना रखा तो हुजूर का ना रखा। सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं की तो अब ये तो होने, तावीज लेने से कुछ नहीं होता भाई, ये तो अमल है, अमल अल्लाह के यहाँ अमल चाहिए। अमल भी, तावीज भी उस वक्त कारगर है जब आपका अमल हो, वो उस वक्त फायदा देगा, वरना वो भी फायदा नहीं देगा। तावीज करने से सही तावीज करना बिल्कुल सही है, अगर शिरकिया ना हो, कोई गलत बात ना हो। आपने अल्लाह की रहमत को बुला लिया तावीज के जरिए से, और एक तरफ नाफरमानी भी कर रखी थी तो अल्लाह की गजब का ट्रक आ गया। एक तरफ रहमत का ट्रक है, एक तरफ गजब का ट्रक है, दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे, क्या होगा, कैसे काम बनेगा? दोनों ट्रक आए थे, दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे, साइड नहीं दे रहे, कैसे काम बनेगा? तावीज करने से रहमत को बुलाया, इसके बाद सुन्नत की मुखालफत की तो गजब को बुलाया, तो काम कैसे बनेगा? तो मैं याद कर रहा हूँ कि इत्तेबाए सुन्नत ऐसी चीज है कि मुखलिस ना हो कोई फिर भी फायदा देती है। तो वो 70,000 जादूगर जो आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वालों जैसा हुलिया बनाकर आए मैदान में, और उनकी ये नियत हरगिज नहीं थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने ऐसा किया हो, हरगिज नहीं। नियत ये थी कि अगर हम हार गए तो हारने वाली पार्टी और जीतने वाली पार्टी में लोग तमीज न कर सके, तो दोनों एक जैसे हैं, कौन है पता नहीं, हारा कौन है, जीता कौन है, तो उस वजह से एक ही जैसे बनते जाओ, उन्हीं के जैसे बन जाओ ताकि हारने वाली पार्टी का पता ही ना चले, ये नियत थी। अब बताइए ये नियत इतने इखलास है कुछ? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद लम्हों के अंदर, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आशा डाला, वो आशा मिनटों के अंदर सारे सांपों को निगल लिया, तो वो समझ गए कि ये हमारा जादू जहां तक था ये जादू से आगे की चीज है। वो फन जानने वाले थे, जादू का फन उस वक्त उरूज पर था, वो जानते थे कि जहां तक हमारा फन पहुंच सकता है ये कुछ उससे भी आगे की चीज है, और वो आगे की चीज वही है, अल्लाह की मदद है बस, और कुछ नहीं, ये सच्चे नबी है। फौरन कालू आमन्ना बिरब हारून व मूसा, फौरन पुकार उठे 70,000 जादूगर कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो मूसा और हारून का रब है अलैहिम सलातु वस्सलाम। उसने कहा लउक़त्तुअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम व लउसल्लिबन्नकुम फी जुदूइन नख्ल, फिरौन ये कह रहा है तुम्हारे हाथ काटूंगा, तुम्हारे पैर काटूंगा, और तुम्हें खजूर के तनों के अंदर चूली और फांसी पर लटकाऊंगा। उन्होंने कहा जो चाहे कर ले, फ़क़्ज़ी मा अंता आज, तुझे जो करना है तू कर ले, इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू बहुत से बहुत ये कर सकता है कि हमारी इस दुनिया की जिंदगी खत्म कर देगा, और क्या कर लेगा। मिनटों के अंदर उनको ऐसा ईमान अता हुआ, इतना जबरदस्त ईमान
कि 70,000 जादूगरों को उसने कत्ल करा दिया, एक को भी नहीं छोड़ा, मगर वो अपने ईमान से नहीं हटे। नबी के मुकाबले पर आए हैं और शहीद होके गए, शहीद होके रुखसत हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने ये मेरे मुकाबले पर आया, आपने इनको ईमान दे दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मुझे गैरत आई कि तेरे हुलिये में ये आए थे, ये तेरे हुलिये में आए थे। मुझे गैरत आई कि मेरे महबूब, मेरा प्यारा बंदा मूसा अलैहिस्सलाम उसके हुलिये में आए और इनको ईमान से न नवाजूं। मैंने इसलिए इनको ईमान दे दिया, और ईमान भी ऐसा मजबूत कि जान देना गवारा कर लिया, मगर उससे हटे नहीं। ये ऐसी चीज है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुकाबले ही नहीं है। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों को बाद में बाद पर फजीलत दी है, बाद रसूलों को बाद पर फजीलत दी है, और हुजूर को तो सबसे फजीलत हासिल है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की के हुलिये में आने वालों के साथ अल्लाह ने ये मामला फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो ज्यादा प्यारे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को, तो आपके हुलिया जो बना ले, आपकी इत्तेबा जो कर ले, उस पर अल्लाह का क्या इनायात और क्या रहमतें होंगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये तो जब आंख बंद होगी उस वक्त पता चलेगा, जब अंदाजा होगा। हाँ, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि ये जो हदीस शरीफ है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहू अजरु मियाती शहीद, कि जो मेरी सुन्नत से चिपका रहा जबकि उम्मत का फसाद का दौर था, सुन्नत पर चलने वालों को अजीब फिक्रों से और अजीब अलकाबात से नवाजा जाता हो, उस वक्त जो सुन्नत से चिपका रहे उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। फरमाया, ये क्या हर सुन्नत पर, मिसाल के तौर पे उसने 100 सुन्नतों पर चला, तो 100 सुन्नतों में से हर एक पर 100 शहीदों का अजर मिलेगा। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सारे मिसकात है, मिसकात शरीफ की 11 जुल्दों में शरा लिखी है अरबी जबान में। उसी में फरमाते हैं, एक बुजुर्ग का वाकया नकल करते हैं, एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का, कि वो उनको मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि क्या माफ़ अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया, तो फरमाया, मेरा हिसाब किया गया, फ़क़िस्तु क़िल्लता हसनाती, मैं मुझे खौफ हुआ कि मैं मेरी नेकियां बहुत कम है, अल्लाह के बारगाह में पहुंचकर मालूम हुआ नेकियां बहुत कम लेके आया हूं। लेकिन फरमाते हैं, फवकात फीहा सुर्रा फथकुलत, जब मेरा मीजान में हिसाब हो रहा था तो उसमें एक थैली आकर गिरी, और उस थैली के आकर गिरने से मेरी नेकियों का पलड़ा एकदम नीचे बैठ गया, झुक गया नीचे, और अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। मैंने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह, ये थैली क्या चीज है, ये इतनी सी थैली आकर गिरी है और सारी मेरी ये पूरा तराजू नीचे झुक गया। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हाजा कफ्फु तुराबिन अल्कैतहु अला कब्रि मुस्लिम, ये वो मिट्टी है जो तूने तदफीन के वक्त अपने एक मुसलमान भाई की कब्र पे डाली थी, मुट्ठी भरकर, एक मिट्टी, हाजा कफ्फु तुराबिन अल्कैतहु अला कब्रि मुस्लिम, एक मुसलमान को दफन हो रहा था, तूने जो मिट्टी डाली थी हाथ से, ये मिट्टी डालना भी तो सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिट्टी डालते थे तो कम से कम 3 दफा डालते थे, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले पढ़ते थे, मिन्हा खलकनाकुम, इसमें एक मुट्ठी डालते थे, दूसरी मुट्ठी भरकर फिर ये पढ़ते थे, वफीहा नुईदुकुम, फिर दूसरी मुट्ठी डालते थे कब्र पर, और फिर तीसरी मुट्ठी भरते थे और फिर ये पढ़ते थे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये पढ़कर तीसरी मुट्ठी डालते थे। कम से कम 3 तो साबित है हुजूर से कि आप डाला करते थे। ये एक मुट्ठी का ये असर है कि सारा वो झुक गया पलड़ा नेकियों का। ये तो वहां पता चलेगा जाकर कि ये सुन्नतें क्या हैं। अरे दोस्तों, मैं अर्ज किया करता हूँ कि ये जो सिख हैं, सारी दुनिया में फिरते हैं, सारी दुनिया में, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, एशिया हो, कहीं पर चले जाइए, ये अपने हुलिये में होते हैं। इनसे पूछिए कि भाई, ये आपने हुलिया कहाँ से बनाया, वो कहते हैं हमारे गुरु नानक का हुलिया है, हमें उससे मोहब्बत है, वो हमारा गुरु है, हम उसकी मोहब्बत में ये हुलिया बनाते हैं। कहीं जाकर अमेरिका में एक अस्पताल, एक फर्म को, एक इदारे को, एक सिख उनके मैयार को पूरा उतरता था, मगर उससे कहा क्लीन शेव नहीं है, आप ये पगड़ी उतारे आप क्लीन शेव होना पड़ेगा, हमारा कानून है। उसने कहा तुम्हारा कानून होगा एक तरफ, रखो अपने कानून को एक तरफ, मैं अपने गुरु नानक के हुलिये को नहीं छोड़ूंगा, अगर इस हाल में रखना है तो रखो वरना मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आइए, हम आपकी कदर करते हैं, हम अपना कानून तब्दील कर देते हैं, उसूल और गवाबित क्या चीज है हम तब्दील कर लेते हैं, मगर हम आपको रखेंगे। एक सिख की इस्तेकामत की वजह से उस इदारे को, पूरे इदारे को अपना कानून बदलना पड़ा, और उस सिख को कुछ नहीं मिलेगा इस पर, क्योंकि ईमान के नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा इस गुरु नानक से, इस टूट कर मोहब्बत करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईमान नहीं है। क्या हमें इतनी भी मोहब्बत नहीं अपने नबी से जितनी सिख को गुरु नानक से है? आज वो तो शर्माता नहीं, कहीं जाता है अपने गुरु नानक के हुलिये में जाता है, हमें शर्म आती है कि हमने अपने नबी का हुलिया बना लिया, तो सोसाइटी ये कहेगी, लोग यूं कहेंगे, हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, जमाना तुम पे हंसता ही रहेगा, किसी का आस्था इतना है ऊंचा कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। वहां सर झुका लीजिए अल्लाह के आस्थान से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा पर आ जाइए, फिर देखिए। और ये उस वक्त होता है जब मुकाबला हो, इत्तेबाए सुन्नत का पता कब, हुजूर की मोहब्बत ज्यादा है दुनिया की मोहब्बत से, सोसाइटी की मोहब्बत से, पता कब चलता है, जब मोहब्बत का पता हमेशा उस वक्त चलता है जब मुकाबला हो, हमेशा ये मोहब्बत का मैयार यही है, जब मुकाबला हो तो मोहब्बत का पता चलता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बदर की लड़ाई है, इतना बड़ा मारका है, हजरत अबू बकर मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, जब इस्लाम ले आए काफी अर्सा बीत गया, अल्लाह ने उन्हें भी इस्लाम की तौफीक दे दी बाद में। एक मरतबा घर में कहने लगे अपने वालिद से कि अब्बा जान बदर की लड़ाई में आप मेरे निशाने पर आ गए थे, मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था। हजरत अबू बकर ने फरमाया बेटा तूने तो मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू मेरे निशाने पर आ जाता बदर की लड़ाई में तो मैं तुझे हरगिज न छोड़ता, कि तू हुजूर की के मुकाबले पर आया, मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि हुजूर के मुकाबले पर आया है, मेरे नबी के मुकाबले पर आया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और यही हुआ, हजरत उमर ने बदर की लड़ाई में अपने सगे मामू को कत्ल किया, सगे मामू को कत्ल किया, अपनी वालदा के सगे भाई को कत्ल किया है कि ये हुजूर के मुकाबले पर आया है, मामू है तो क्या हो गया। मोहब्बत का पता मुकाबले पर चलता है। हाँ, और जब बदर के कैदी आए हैं, हुजूर ने मशवरा किया, बताओ भाई इनका क्या किया जाए, हजरत उमर ने फरमाया हजरत अबू बकर की राय अलग, हजरत उमर की राय अलग, दूसरे सहाबा की और मुख्तलिफ राय आए सामने। हजरत उमर की राय जो आई वो ये थी कि ये जिस के जाहिर है उनमें से किसी की, मुसलमानों में से किसी से रिश्तेदारी जरूर थी, आपस में रिश्तेदारियां थी मुसलमानों की और कुफार की, तो हजरत उमर ने राय दी कि ये जिस के रिश्तेदार हैं उसको उसके हवाले किया जाए और वो अपने रिश्तेदार को कत्ल करे, बस उनका यही इलाज है। ये मुकाबले पर आए हैं आपके, हुजूर के मुकाबले पर आए हैं, ये इस बात के मुस्तहिक नहीं कि इनको छोड़ा जाए। मोहब्बत का पता मुकाबले पर चलता है कि मोहब्बत किसकी ज्यादा है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, अबू सुफियान सबसे काफिर उस वक्त कुफर की हालत में थे, वो तो फतेह मक्का पर इस्लाम अल्लाह ने तौफीक दी, वरना मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में सबसे आगे अबू सुफियान हुआ करते थे, और ये और हुजूर की बीवी बन चुकी हजरत उम्मे हबीबा, बाप कुफर की हालत में जब ये आए अपनी बेटी से मिलने के लिए, हुजूर तो उस वक्त घर पर नहीं थे, ये अपनी बेटी से मिलने आए, तो जल्दी से जब बैठने लगे तो जिस बिस्तर पर बैठना चाह रहे थे, जल्दी से उनकी बेटी ने हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला ने वो बिस्तर उलट दिया। वो हैरान कि बेटी तू तो मेरी बड़ी खिदमत गुजार थी, और बाप अरब में ये रवाज है कि बाप जब जाता है बेटी के घर में तो बेटियां बिस्तर बिछाया करती हैं और तू बिस्तर हटा रही है। कहने लगी ये हुजूर का बिस्तर है, आप हालत कुफर में है, ये हुजूर का बिस्तर है, आप इस पर नहीं बैठ सकते। हाँ, मोहब्बत का पता मुकाबले पर चलता है कि बाप की मोहब्बत ज्यादा है या अबू सुफियान की मोहब्बत ज्यादा थी या हुजूर की मोहब्बत ज्यादा है, पता उस वक्त चलेगा। मैं आज कर रहा था, बेटी बेटी की रुखसती हजरत अली के घर लेकर गए हुजूर, बेटा अपने दामाद अपने घर में है, हुजूर अपनी बेटी को लेकर गए, ये रुखसती है हजरत फातिमा की कि बाप अपने बेटी को खुद लेकर जाए। ये तो बारात आ रही है, ढोल धमाका हो रहा है, न जाने क्या क्या एक तूफान बदतमीजी है, तो फिर बाप के जो ये हालात होते हैं और तलाक तक नौबत पहुंचती है तो हमसे तावीज लेने से क्या फायदा, या और किसी से तावीज लेने से या आमिलों के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब शादी ने अल्लाह को नाराज किया, हुजूर से सुन्नत का ख्याल नहीं किया, पता तो जब ही चलता है कि मुआशरे की मोहब्बत ज्यादा है या हुजूर की मोहब्बत ज्यादा है। अगर हुजूर की मोहब्बत ज्यादा है तो हुजूर की सुन्नत ठीक कर अमल करेगा कि कुछ भी है, मुआशरे वाले नाराज होते होते रहे। मुआशरा कब्र में बचाने आएगा, बीवी कब्र में बचाने आएगी या वालदैन कब्र में बचाने आएंगे, बचाने आएंगी तो सुन्नतें ही बचाने आएंगी और ये दीन और शरीयत ही बचाने आएगी, वहीं पर इसी से निजात होगी, वहां कोई काम आने वाला नहीं। बस वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालदा साहिबा की, अच्छा एक सुन्नत मैं अर्ज कर दूं, ये जो सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि नमाजों में मुख्तलिफ नमाजों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सूरतें पढ़ा करते हैं। जैसे फजर की नमाज में सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक, ये इसके दरमियान की जो सूरतें हैं, सूरह हुजरात सूरह 26वें पारे में, सूरह बुरूज 30वें पारे में, इसके दरमियान जो सूरतें हैं इन सूरतों का फजर की नमाज में पढ़ना ये सुन्नत है। और फजर की सुन्नतों में से एक सुन्नत, जो दो सुन्नतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और जिसको बाग उलमा ने वाजिब तक लिखा है, सफर में भी इन सुन्नतों के छोड़ने की इजाजत नहीं है, ये फजर की जो दो सुन्नतें हैं जो पहले पढ़ी जाती हैं, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि पहली रकात में सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। ये आपकी मुस्तकिल सुन्नत थी, कभी कभी इसका नागा हो जाता था कभी कभी, लेकिन अक्सर यही आपका मामूल था कि फजर की दो सुन्नतों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास आपका मामूल था। अल्लाह ताला उन सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वालदा साहिबा की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला इनकी वालदा को नेक अमाल के लिए खूब सेहत अता फरमाए। मेरी अहलिया अक्सर बीमार रहती हैं, अल्लाह ताला इनकी अहलिया को नेक अमाल के लिए खूब सेहत आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन व हुवा अहलु। ए अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह बेहिसाब मगफिरत फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को हिदायत कामिला नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की ऐ अल्लाह जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए, सुन्नत पर मर मिटना नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह माशरे और नफ्स और शैतान के मुकाबले की हिम्मत नसीब फरमा दीजिए, गुनाहों से ऐ अल्लाह नफरत नसीब फरमा दीजिए, नेकियों से मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमईन, आमीन व रहमतिक या अरहम राहिमीन। इसी तरह एक सुन्नत ये भी आज कर लूं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल फर्ज और वाजिब नमाजों के बाद खामोशी से दुआ करने का था। उद्ऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कुरान की आयत है कि ए ईमान वालों अपने रब से चुपके चुपके दुआएं किया करो। तो हुजूर का जो मामूल था वो खामोशी से दुआ करने का था। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये सुन्नतों का बात चल रही है और सुन्नतों पर मर मिटना और सुन्नतों पर अमल, तो हुजूर का मामूल अक्सर यही था और चंद मौके पर आपने जोर से दुआ करवाई है। वो चंद मौके कौन से थे, उलामा फरमाते हैं या तो आप लश्कर में तशरीफ ले गए साथ तो दुश्मनों को रोब में लाने के लिए जोर से दुआ करवाई या उस वक्त था, या मुसलमान सहाबा को तालीम देने के लिए जोर से दुआ कराई ताकि दुआ कैसे मांगी जाती है कि पहले अल्लाह की तारीफ हो फिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और किन अल्फाज से मांगना चाहिए किस तरह मांगना चाहिए, ये चंद मौके हैं, सिर्फ चंद मौके जब आपने जोर से दुआ कराई वो भी या तो सिखाने के लिए या दुश्मन को रोब में लाने के लिए बस, वरना आपका मामूल खामोशी से दुआ कराने का था। जब ये सुन्नत की इत्तेबा हम करेंगे तो कबूलियत की ज्यादा उम्मीद है, इसी वजह से यहाँ खामोशी से दुआ होती है। वो बाद लोग उठ के चले जाते हैं, वो मैं सोचने जन रखता हूँ कि हो सकता है कुछ तबई हाजत हो, बैतुल खला वगैरह जाना हो, लेकिन दुआ होती तो है। ये तो नहीं कोई कह सकता कि दुआ नहीं होती, खामोशी से होती है, सिर्फ जाविया निगाह का फर्क है कि कोई कहता होती नहीं भाई वो कैसे कहते हैं होती है, आप पहली सब में बैठने वालों से पूछ रहे हैं दुआ तो होती है, वो सिर्फ जाविया निगाह का फर्क है कि आप कहते हैं कोई कहता है नहीं होती ही नहीं है, होती तो है लेकिन सुन्नत के मुताबिक होती है, जैसे हुजूर ने किया वैसे हम करते हैं ताकि कबूल हो जाए। खुलास करेंगे तो उम्मीद नहीं है इतनी, सुन्नत के मुताबिक सुन्नत की मुताबिकत ना हो तो उसके कबूलियत की उम्मीद नहीं रहती, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।